नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।